बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिस्र में जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी का सिदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान और इख्वानुल मुस्लिमीन के सैकड़ों अराकीन के लिए सजाए मौत का फैसला। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। अंदाज़ नाज़रीन, मिस्र में मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलटने और इनकलाब को सबोताश करने के मेन कैरेक्टर जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी ने सरंजाम सिदारती उम्मीदवार बनने का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। उन्होंने पीर की रात वजारत दिफा और फौज की सरबराही से इस्तीफे का ऐलान करने के बाद कहा कि वो सिदारती इलेक्शन में उम्मीदवार बनेंगे। जनरल असीसी का सिदारती उम्मीदवार बनना गैर मुतवक्के नहीं है। इसके लिए 3 महीना पहले ही कैंपेन शुरू की जा चुकी है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि इसकी तैयारी उसी वक्त शुरू कर दी गई थी जब अवाम के मुंतखब सदर को फौजी बगावत के जरिए इकतदार से हटा के गिरफ्तार कर लिया गया था। अगरचे उस वक्त जनरल असीसी ने अदली मंसूर को अबूरी सदर नामजद किया और उनकी काबीना में बतौर वजीर दिफा शरीक हुए, लेकिन असल इकतदार बतौर आर्मी चीफ उन्हीं के पास रहा और मिस्र की तारीख से वाकिफ हलकों ने उसी वक्त कह दिया था कि जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी सदारत की कुर्सी तक जाएंगे और हुकूमत एक बार फिर बराह रास्त फौज के पास चली जाएगी। पीर की रात जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी के सदारती उम्मीदवार बनने के ऐलान के फौरन बाद इख्वानुल मुस्लिमीन के तरफदार यूनिवर्सिटी तलबा ने मुजाहरे किए और उन पर सिक्योरिटी एहलकारों के हमले में कम से कम एक फर्द जांबहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यह ऐसी हालत में है कि मिस्र में फौज की लाई हुई अबूरी हुकूमत इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द तंजीम करार दे चुकी है। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने भी इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द तंजीम करार दिया और 24 मार्च को इख्वानुल मुस्लिमीन के 529 अराकीन को मिस्र की एक नुमाइशी अदालत ने सजाए मौत देने के फैसले का ऐलान किया, जबकि इस तंजीम के मजीद 800 अरकान के खिलाफ जाली मुकदमात की समाअत इसी नुमाइशी अदालत में हो रही है जिसने चंद रोज़ कबल ये फैसला सुनाया। इस फैसले पर अगरचे इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत आलमी इदारों ने तश्वीश का इजहार किया है और यूरोपीय यूनियन नीज अमेरिका ने भी इस पर एतराज़ किया है, लेकिन इस पर वो आलमी रद्द अमल सामने नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी। मामूली मामूली बातों पर दुनिया के मुल्कों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और पाबंदियों की धमकियां देने वाले मुल्कों ने सिर्फ जबानी इजहार तश्वीश पर इक्तफा किया है, जबकि किसी भी मुल्क में एक सियासी इनकलाबी जमात के लिए इतने ज्यादा अराकीन को एक साथ सजाए मौत देने का फैसला कोई मामूली वाकया नहीं है। इस पर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास होना चाहिए था। सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत के साथ मिस्र में इख्तदार पर काबिज टोले को सख्त तरीन नतायज के इंतबाहात मिलने चाहिए थे और उस पर फैसला वापस लेने के लिए इंतहाई दबाव पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और इसके तीसरे ही दिन जनरल असीसी ने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम पहले मिस्र में मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी, जो फौजी बगावत के जरिए माजूल कर दिए गए हैं, उनके साथियों और इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले 529 अफराद को सजाए मौत सुनाने के नुमाइशी अदालती फैसले पर इंतहाई कमज़ोर बैनुल अक्वामी रद्द अमल का जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के ऐलान पर वो रद्द अमल क्यों नहीं आया जो आना चाहिए था। इंसानी हकूक़, आज़ादी और जमहूरियत के दिफा के दावेदारों ने इस पर आवाज़ क्यों न उठाई। इख्वानुल मुस्लिमीन को पहले मिस्र की अबूरी हुकूमत ने और इसके बाद सऊदी हुकूमत ने दहशत गर्द तंजीम करार दिया है। यह तंजीम दहशत गर्दी के किस मेयार पर पूरी उतरती है और इसी के साथ जनरल अब्दुल फत्ताह असीसी के सिदारती उम्मीदवार बनने के बारे में भी अपने मुअज्ज़ज़ मेहमानों का तजिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे, मगर पहले इस बारे में हमारी रिपोर्ट।
مصر میں حالات کچھ اس انداز سے بدل رہے ہیں کہ کسی بھی لمحہ راکھ میں دبی چنگاری شعلے کا روپ اختیار کر سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل عبد الفتاح سیسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور صدارتی الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح تجزیہ نگاروں کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا کہ مصر میں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ کئی عشروں سے اقتدار کے ایوانوں پر قابض رہ چکی فوج کے لیے بیرکوں تک محدود رہنا بہت دشوار ہے۔ قیاس آ رہی ہیں کہ عبد الفتاح سیسی آسانی سے صدارتی الیکشن جیت جائیں گے۔ بدھ کو قومی ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عبد الفتاح سیسی نے کہا کہ وہ آخری بار فوجی وردی پہنے ہوئے ہیں اور صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے وہ قوم کے دفاع میں اپنی وردی سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کو دہشت گردی سے خطرہ ہے اور وہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ مصر میں صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا عمل اتوار سے شروع ہونے والا ہے، تاہم حکومت نے تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن قوی امکان ہے کہ آئندہ ماہ صدارتی انتخابات ہوں گے۔ دوسری جانب اخوان المسلمین کے لیے حالات انتہائی سخت ہو گئے ہیں۔ اخوان المسلمین کے 529 اراکین کو سزائے موت سنائی گئی ہے، جس پر داخلی اور بین الاقوامی رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ مصری عدالت نے اخوان المسلمین کے اراکین کو جو سزا سنائی ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے بھی اخوان المسلمین سے وابستہ افراد کو سنائی جانے والی سزائے موت کو نہایت تشویشناک قرار دیا۔ مصر میں اس فیصلے کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہروں کی خبریں آئی ہیں۔ مصری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس انداز سے عدالت نے اخوان المسلمین کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک میں آنے والا انقلاب ناکامی کی جانب بڑھ رہا ہے اور ملک میں انصاف و مساوات اور آزادی کی جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں وہ اب معدوم ہو رہی ہیں۔ مصر کی جیلوں میں اخوان المسلمین کے 16,000 افراد قید ہیں اور فوجی حکومت کی دلی خواہش یہی ہے کہ ان تمام افراد کو میدان سے ہٹا دیا جائے۔ عدالت نے محض 2 دن کی سنوائی میں یہ فیصلہ سنا دیا اور فوج نے بھی اس کی حمایت کر دی اور فیصلے کی تائید کے لیے اسے مفتی کے پاس بھیج دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ سنایا گیا ہے ان تمام کو یا ان میں سے اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مصر میں اہم ادارے آگے چل کر کس نہج پر کام کریں گے اور ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے مصری عوام کے اندر پھیلا غم و غصہ رد عمل کا باعث بنے گا، یعنی ایک دفعہ پھر جھڑپوں میں نئی شدت پیدا ہوگی اور تصادم بڑھ سکتا ہے۔ اخوان المسلمین سے فوج کی نفرت فطری ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ بہت پرانا ہے، لیکن فوجی عہدیداروں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس نفرت کی آگ کی تسکین کے لیے کہیں وہ مصر کے مستقبل کی تو بازی نہیں لگا رہے ہیں۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی سے حصہ لیں گے برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان۔ اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے گفتگو ہوگی پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ثاقب اکبر سے، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا قیصر خان کو۔ تو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ثاقب اکبر صاحب سے۔ ثاقب اکبر صاحب، السلام علیکم۔ جی جناب ثاقب اکبر صاحب، مصر میں جنرل السیسی نے سر انجام صدارتی امیدوار بننے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، کیا تبصرہ ہے آپ کا اس اعلان پر؟
میرا خیال یہ ہے جی کہ جب انہوں نے فوج نے قبضہ کیا تھا اور ٹیک اوور کیا تھا تو بات اس وقت ہی ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ جو تھوڑی سی مہلت انہوں نے دی ہے لوگوں کو اپنے نقطۂ نظر کے اظہار کے لیے، اور جس کے نتیجے میں صدر مرسی اور اخوان المسلمین کی حکومت مصر میں قائم ہوئی، یہ نہ فوج کو وہاں پہ وارا کھاتی ہے اور نہ علاقے کی جو باقی ڈکٹیٹرشپ اور خاندانی بادشاہتیں ہیں ان کو وارا کھاتی ہے یہ تبدیلی، اور نہ ہی اسرائیل کو وارا کھاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ نیم دلی سے اس کو جو ہے وہ امریکہ اور باقی قوتوں نے بھی تسلیم کیا تھا یا قبول کیا تھا، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے دوران میں ایک متبادل حکمت عملی کو جو ہے وہ تیار کیا، اور ایک سال بھی پورا ہونے کو نہیں آیا تھا کہ پھر وہی 1952 سے جو فوجی اقتدار کا سلسلہ جو ہے وہ مصر میں جاری تھا اسی کو انہوں نے پلٹ لیا۔ اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک پاپولر جماعت جو تمام انتخابات ہوئے اپنا انقلاب کے بعد उन तमाम इंतखाबात में जो जमात सबसे ज्यादा पॉपुलर पोल डे के सामने आई, उस जमात को जो है वो आज अपना मिस्र में जो है वो खिलाफ कानून और एक दहशतगर्द जमात के जो है वो करार दिया गया। और फिर आप ये भी देखें कि दो चीजें बड़ी अहम हैं जो इस खित्ते की सियासत को समझने के लिए। एक ये कि जब ये फौज बरसर इकतदार आई है तो खुद शाह अब्दुल्ला ने फोन किया है और इसकी तायिद की है और उसको सपोर्ट किया है। दूसरी बात ये है कि जब इंतखाबात का भी डोल डाला जा रहा था तो उसी जमाने में ये हिजबुल नूर की बुनियाद रखी, जो एक
जी
सलफी जमात थी, ताकि इस्लाम का नारा अगर इख्वान मुस्लिमीन लगाएगी तो एक और मुतबादल भी जो है वो मौजूद हो, और बेपनाह सरमाया उस पर खर्च किया गया। दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उसको वहां पे सामने लाया गया। अब वही जमात जो है उसने साबित कर दिया कि वो किन की नुमाइंदा थी और वो किन मकासद के लिए जो है वो सामने आई थी। इस इनकलाब ये जो अपना मुंतखब हुकूमत के खिलाफ जो फौज ने इकदाम किया उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया, और आज जो जनसीसी ने अपने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया या बाकी जो इकदाम हो रहे हैं उसको भी हिजबुल नूर की हमायत हासिल है और सऊदी अरब की भी हमायत जो है उसको हासिल है। अगर इस फौजी जनता ने इख्वान मुस्लिमीन को खिलाफ कानून करार दिया और दहशतगर्द करार दिया तो बिल्कुल 100% वही इकदाम जो है वो सऊदी अरब ने किया। आप ये देख लें कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंतखब हुकूमतों का जो सिलसिला शुरू हो रहा था मिस्र के जरिए से, वैसे तो उसकी इब्तदा ईरान से हुई थी, अब अगर अरब दुनिया में और एक सुन्नी अक्सरियत के मुल्क में भी अगर मुंतखब हुकूमत, और वो भी सबसे ज्यादा जहां पे आवाम की तादाद सबसे ज्यादा है, आबादी जहां सबसे ज्यादा है, और एक हमसाया मुल्क है सऊदी अरब का, अगर वहां पे जमहूरियत पनपने लगे तो जाहिर है कि इसका पैगाम बाकी इलाके की बादशाहतों को तक पहुंचता है और आवाम तक पहुंचता है। यही वजह है कि ना फकत ये कि सऊदी अरब ने वही इकदाम किए जो वहां पे फौजी हुकूमत ने किए, बल्कि
जी साकिब, अकबर साहब से राबता दोबारा बरकरार किया जाएगा। कराची से कैसर खान साहब से राबता बरकरार हुआ है। कैसर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब खान साहब, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी ने सदारती उम्मीदवार बनने का बाज़ाबता ऐलान किया है और दावा किया है कि आवाम के मुतालिबे पर वो सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे के बारे में?
आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा दोहराएंगे जरा सवाल।
भाई जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी ने मिस्र में सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है बाज़ाबता, और इसके लिए उन्होंने वजारत दिफा और फौज की सरबराही से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आवाम के मुतालिबे पर, आवाम की ख्वाहिश पर अमल करते हुए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र की
जी
जो सूरत हाल है, अगर इसको आप माजी में भी रख कर देखें और इस वक्त जो मामलात मिस्र में हो रही हैं
जी
उसको, जाहिर है कि पिछले इसके माजी से काट कर तो नहीं देखा जा सकता,
जी
क्योंकि मिस्र में हमेशा पिछले तकरीबन 40 साल से सिविल आमरियत ही रही है, जो
जी
कि अनवर सदार या हुस्नी के इक्तदार के हवाले से, और ये वो सिविल हुकूमतें थी जो आमिर थी, ये लोग आमिर थे और इनको बड़ी ताकतों की पुश्त पनाही हासिल थी और वो रही है।
जी
और उसके बाद जो भी इन्होंने एक नाम निहाद चेंज लाने की कोशिश की, और उसमें एक ऐसी पार्टी अगरचे कि उसकी बुनियादें अच्छी थी लेकिन बाद में वो अपनी जो अहमियत है वो भी खो चुकी थी, फिर यह है कि लोगों को उसकी तरफ ले जाना। और अगर इस पूरे इनकलाब को अगर आप देखें तो इसका सिविल आमरियत का खात्मा जो है वो भी मिस्री अवाम ने किया, और उससे अगली जो पहली मुंतखब हुकूमत यहाँ पर मिस्र में बनी वो भी अवाम के तामन और उनके वोटों से बनी, और लेकिन उस हुकूमत को 1 साल चलने दिया गया और उसके बाद उसको भी उन्होंने उतार दिया। हमने देखा ये है, और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में भी हमने ये बात देखी है
जी
कि जब भी इन ताकतों ने कोई बड़ा काम लेना होता है तो वो लाजमी किसी आमिर को जो है मुसल्लत करते हैं, जैसे पाकिस्तान की मिसाल मौजूद है कि यहाँ पर ज़ियाउल हक के दौर में अफगान इशू उठाया गया, इसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में भी अफगान इशू उठाया गया और अपनी मर्जी का काम जो है वो उन्होंने उनसे लिया। अभी ये जो इन्होंने अब्दुस्सत्तार अल-सीसी ने जो ऐलान किया है, मैं उसको उसी तनाजुर में देख रहा हूँ, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये अब्दुस्सत्तार अल-सीसी जो है ये समझ लें कि जैसे मुस्तकबिल का या हुस्नी मुबारक होगा या अनवर सादात होगा, और इनसे वही काम लिया जाएगा जो कि साबिक उनसे लोगों से लिया जाता रहा है। इसमें अभी जो ग्लोबल जो तब्दीलियां यहाँ पर आ रही हैं शाम के हवाले से, और इस वक्त शाम का जो मसला है वो बहुत ज्यादा जो है अहमियत रखता है इस पूरे खत्ते में, और इसने बहुत सारी तब्दीलियां यहाँ पर मतलब पैदा की हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में भी हुई हैं, इस तरह से सऊदीया जिस तरह से तमाम लोगों को, तमाम ऐसे ममालिक को उनकी पुष्ट मनाही कर रहा है और उनको इस तरह का सपोर्ट उनको दी जा रही है, जैसे अब के मिस्र की इनके आर्मी को उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है एक एड इन्होंने दी है डॉलर्स में दी है। इसी तरह की सूरत हाल जो पाकिस्तान में हुई है कि इनको भी 1.5 अरब डॉलर की जो है इमदाद तोहफे के तौर पर दी गई है, और इसी तरह की सूरत हाल उन्होंने मिस्र में भी बनाई है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही है और ये वाजे नजर आ रहा है कि ये आने वाली हुकूमत से अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना चाहते हैं
जी।
और क्योंकि मिस्र इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम मुल्क है कि इसकी सरहद जो है ये फलस्तीन के साथ जो है ये लगती है, और इससे क्या ये फायदा उठाना चाहते हैं आप आगे चल के, ये इसराइल को लाजमी सपोर्ट करना चाह रहे हैं और इन अपने मकासद इनके जो है जो पूरी अरब दुनिया में, क्योंकि इन्होंने शुरू में नारा ये लगाया था कि हर अरब मुल्क में जमहूरियत होगी, फिर टूटी फूटी जमहूरियत इन्होंने कायम करने की कोशिश भी की, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ऊपर जो बादशाह थी उसको कायम रखते हुए, बादशाह को कहीं भी छेड़ा गया लेकिन उसके तहत जो है इन्होंने असम्बलियां और जो मुंतखब मेंबरान इस किस्म का मतलब ढोंग रचाने की कोशिश की थी, जबकि जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है। जमहूरियत तो वो होती है कि जिसमें मुकम्मल हुकूमत का एक पूरा जो है सिस्टम तब्दील होता है, एक ढांचा तब्दील होता है और उसमें अवाम की मर्जी से, अवामी नुमाइंदों के तावन से और उनके बनाने से जो एक हुकूमत बनती है, एक सिस्टम बनाया जाता है और उसके मुताबिक हुकूमत चलती है और अवाम को जिससे फायदा होता है। बादशाह में कभी ऐसा नहीं होता, नीचे जितनी मर्जी आप असम्बलियां बना लें जो भी कर लें, लेकिन ऊपर से वही एक बादशाह बैठा हुआ है जो सब कुछ उसके अपने हाथ में है और जो वो चाहेगा वो करेगा। तो इस लिहाज से जो मिशन में अब जो कुछ होने जा रहा है वो भी बिल्कुल यही कुछ है, इलेक्शन हो जाएगा, इसमें ये ज़ाहरे खुद ही जीतेंगे, किसी और के आगे नहीं आने देंगे, और उसके बाद ये एक इनका सिलसिला जो है ये कायम हो जाएगा और आइंदा के लिए इसको इसी तरह ये रखेंगे जिस तरह की माजी में उन्होंने सिविल आमरों को रखा था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब, लाइन पर रहिएगा। साकिब अकबर साहब से राबता दोबारा बरकरार हो गया है। जी साकिब साहब, जनरल सीसी ने पीर की रात ये भी दावा किया है कि मोहम्मद मुर्सी को अवाम के मुतालबे पर इख्तदार से हटाया गया है और अवाम के ही मुतालबे पर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि फौज का ये काम नहीं है जो वो करने जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी, सारी दुनिया में जमहूरियत से लोग शनासा हैं, लोग जानते हैं कि फौज का कोई काम नहीं है कि वो सियासत में आए। एक फौजी वर्दी पहने हुए आदमी आके वो कहता है कि मैं कल से फौजी वर्दी जो है वो उतार रहा हूँ, अपनी मर्जी का नया वजीर दिफा और अपनी मर्जी का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाकर, तो फिर उसके बाद जो है वो कहता है जी अब मैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। कौन नहीं जानता कि माजी में भी 90% से ऊपर, 98% या इस तरह के वोट अपने आप को जाहिर करते रहे, हसनी मुबारक भी और उससे पहले अनवर सादात भी जाहिर करते रहे कि अवाम में उनकी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन जब इनकलाब आया तो पता चला कि वो तो यानी जर्द पत्तों की तरह से वो उड़ गए, खजान रसीदा पत्ते की हैसियत रखते थे वो सारे के सारे, और आज फिर वही फौजी इकतदार के जरिए से जो है वो अपने आप को ये जाहिर करना कि वो बहुत पॉपुलर हैं। अगर वो वाकई पॉपुलर हैं तो फिर इख्वान मुस्लिमीन को और बाकी सारी पार्टीज को भी आजाद छोड़े, फिर मोहम्मद मुरसी को और बाकी लोगों को भी जो अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे पेश करता है उनको पेश करने दें, फिर उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, फिर मीडिया उनके जो मीडिया है उनके ऊपर भी पाबंदियां ना लगाएं, फिर बदतरीन जो जुल्म साफियों के साथ किया जा रहा है उसका सिलसिला बंद किया जाए, फिर ये जो 529 आदमियों को फांसी का ऐलान किया गया है और उनपे जुर्म क्या है कि जी उन्होंने दो पुलिस वालों को मारा है, फिर ये सिलसिला जो है इसको बंद करें ताकि पता चले कि वाकई अवाम के अंदर उनको जो है वो पॉपुलरिटी हासिल है। मेरा ख्याल है इस धौंस और धांधली को पूरी दुनिया के जो जमहूरियत पसंद अवाम हैं, लोग हैं जो हकीकी जमहूरियत के तर्ज अमल को जानते हैं, वो किसी तौर पर भी इसको कबूल नहीं करेंगे कि इनको जो है वो अवामी पॉपुलैरिटी हासिल है। ये बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जैसे हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि रेफरेंडम जियाउल्लाह ने कराया था और उसके बारे में लोगों ने कहा कि जिन और भूतों ने आके उसको वोट डाले हैं, और वही उन्होंने भी अपने आप को ये जाहिर किया कि 90% से ज्यादा लोगों की हमायत उनको उनको हासिल है। इसी तरह की बाकी भी दुनिया में डिक्टेटर और हुक्मरान जो है वो करते चले आ रहे हैं और यही ये करेंगे। अफसोस तो उन लोगों पर है जो पूरी दुनिया में जमहूरियत का ढोंग रचाते हैं, जो जमहूरियत का शोरा करते हैं, जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, उनको मिस्र में ना जमहूरियत नजर आती है और ना उन्हें मिस्र में इंसानी हकूक की बात नजर आती है। मैं जानता हूं कि जान कैरी ने जिस तरह का बयान दिया है, मुझे पता है यूरोपीय यूनियन ने जो बात की है, यानी अगर बाकी दुनिया में इस तरह से हो तो क्या उनका रद्द अमल इसी तरह के होता है? यानी उनका बिल्कुल 100% तआवुन जो है वो जारी है और उनकी हामी रियासतों की तरफ से भी इसी तरह से फौजी डिक्टेटरशिप का जो है वो भी तआवुन उनकी सरपरस्ती जो उनको जारी है। और मैं ये समझता हूँ कि असल मकसद जो है वो वहां पे जो उन्होंने ऑर्डर कायम किया हुआ है इसराइल और सहयोगी रियासत की हिफाजत के लिए, वो उस ऑर्डर को कायम जो है वो बाकी रखना चाहते हैं। सब जानते हैं कि हमास के ऊपर पाबंदी लगाने का क्या मकसद है, सब जानते हैं कि हमास के लिए गजा की स्ट्रिप जो है वो रास्ता जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन ने खोला था और इन्होंने आके बंद कर दिया। सब जानते हैं कि इसराइल जो है वो हमास से नाला है, सब जानते हैं कि ये फौजी जनता जो है दर हकीकत इसराइल के मकासद और इस इलाके में जो है वो इस्तेमारी ताकतों के मकासद पूरे करते चली आई है। अगर इनको अवामी पॉपुलैरिटी का इतना बड़ा जाम है तो फिर ये ना फकत ये कि फौज मैदान में ना आए, हकीकी तौर पर सिविलियन जो है वो मैदान में आए और बाकी लोगों को भी जो है इख्वानुल मुस्लिमीन समेत सबको जो है ये मौका दिया जाए कि वो आजादाना इंतखाबात में हिस्सा ले, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मिस्र के बारे में गुफ्तगु हो रही है, सारे हालात आपके पेश नज़र हैं।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी सर, अंजाम जनरल अब्दुल फत्ता सीसी ने फौजी वर्दी उतार के सियासत के मैदान में आने और सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा यह किया है कि इलेक्शन वो अवाम के मुतालबे पे लड़ रहे हैं, उनके इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं, उनका दावा यह बिल्कुल झूठा है, इसलिए कि सिर्फ 2 साल पहले अवाम की अक्सरियत ने न सिर्फ सदर मुर्सी को चुना था बल्कि उस पार्लियामेंट को भी चुना था जिसमें अक्सरियत जो इख्वान मुस्लिमीन की थी, और मजलिस शूरा को चुना था जिसमें अक्सरियत इख्वान मुस्लिमीन की थी, और उसी अवाम ने अक्सरियत से इनका बनाया हुआ यानी सदर मुर्सी की जो टीम थी उनका बनाया हुआ जो दस्तूर था जो आइन था उसको मंजूर किया था। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि 2 साल में इतनी बड़ी कौन सी चीज़ आ जाएगी के सारे अवाम अपने उन जो जो अवामी उनके जो रहनुमा उनके खिलाफ हो जाएंगे और एक फौजी वर्दी पहने हुए, जबकि अभी सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने एक फौजी वर्दी पहने हुए लोग आदमी को निकाला था। हकीकत यह है कि ये जो पूरी साजिश हो रही है एक फौजी आदमी को लाने की, न सिर्फ ये कि मिस्री फौज नहीं चाहती कि उसका जो इख्तदार में हक पहले से 1952 से चला आ रहा है वो किसी तरह से मुतजलजिल हो, बल्कि जो खलीजी और सऊदी और अमरीकी और फ्रांसीसी और बरतानवी ताकतें हैं ये भी नहीं चाहती हैं कि कोई हकीकी और जमहूरी और अवामी हुकूमत मिस्र में कायम हो, इसलिए कि अगर वो कायम होती है तो इस सारे खित्ते पर उसका असर होगा क्योंकि मिस्र ऐसी मरकजी जगह है आलम अरब में कि वहां पर अगर कोई भी निज़ाम कायम होता है तो उसकी तासीर हर जगह होती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक वगैरह जो दूसरे कुवैत इमारात वगैरह हैं ये सब हाथ धोकर के पड़ गए थे सदर मुर्सी और उनकी हुकूमत के खिलाफ, और इन्होंने दिल खोल करके फौजियों फौजी हुकूमत को फौजी हुकूमत बल्कि आने से पहले ही इन लोगों ने उनको पैसे देने शुरू कर दिए कि हमको ये नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि जिस दिन सदर मुर्सी आए थे उसी दिन दुबई के जो पुलिस चीफ है दाही खलफान उसने कह दिया था कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं सोऊंगा जब तक मैं इख्वान की हुकूमत को खत्म नहीं कर दूंगा। इसलिए कि वो जानते हैं कि इस तरह की शुराई और इस तरह की जमहूरी और आवामी ताकत अगर के कहीं पर हुकूमत में आएगी खुसूसन मिस्र में आएगी तो उसका असर पूरे खित्ते पर होगा। और ये लोग चाहते हैं कि वो जो मुलुकी निज़ाम जो पुराना जो आज का नहीं बल्कि आज के ज़माने में भी बरतानिया वगैरह में ऐसी ऐसी मुल्की निज़ाम है शानशाही निज़ाम है जिसके अंदर के पूरी तरह से जमहूरियत है और वो खाली फिगर हेड होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल दूसरी है कि ये जो हुक्काम है खलीज के और बल्कि दूसरे ममालिक में भी जो अरब जो हैं वो इस किस्म के हैं कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उसूर वस्ता की तरह से वो हाकिम रहें और मुल्क के अंदर और मुल्क के मफादात के बारे में अवाम और सारी जो दौलत है उसको एक जाती और एक ख़ानदानी मिलके समझ कर उस पर तसर्रुफ करें। तो ये वो यानी ये वो बैकग्राउंड है जिसमें ये सब इनकलाब लाया गया है और उसकी ताईद हो रही है और दिल खोल करके वो पैसे दिए जा रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सीसी को कोई अवामी ताईद हासिल है, यकीनन कुछ ना कुछ लोग वोट देंगे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निज़ाम होगा जो कि पहले हम सद्दाम हुसैन के में देखा करते थे और इसी तरह से मुबारक और अनवर सदात और नासिर के ज़माने में देखते थे कि अवाम के सामने कोई चॉइस ही नहीं होता था। अब ये होगा कि जो एक दो आदमी दिखाने के लिए खड़े किए जाएंगे वो डमी जो है वो जो उम्मीदवार होते हैं दिखाने के उम्मीदवार होते हैं लेकिन असल उम्मीदवार यही होगा। और उसके अलावा पूरी जो स्टेट मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा जो सारा इसलिए कि उनकी है। जो अभी हमने देख लिया कि मिस्र में अदालतें क्या कर रही हैं, एक अदालत मिनिया में एक अदालत ने 528 लोगों को सिर्फ दो नशिस्तों में, एक नशिस्त सिर्फ 20 मिनट की थी और अगली नशिस्त में वकीलों को आने ही नहीं दिया गया, इस अदालत ने 528 आदमियों को फांसी की सजा दे दी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये निज़ाम किस किस्म का है। यही निज़ाम है, यही वो डीप स्टेट है जो कि सीसी को दोबारा मुंतखब करेगा। इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो जो इम्तियाजात फौज को मिले हुए थे और जो फौज से मुताबिन जो लिबरल तबका है उसको मिले हुए थे वो उनको मिलते रहें और इस किस्म का इनकलाब किसी और दूसरे अरब मुल्क में ना हो। और ये फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ये इसमें कामयाब है लेकिन अवाम के सामने कुछ नहीं है, अवाम के सामने कोई नहीं जीतता। और ये इससे पहले हम बार बार देख चुके हैं, खुद ईरान में देख चुके हैं किस तरह से अवाम के सामने इतनी बड़ी शानशाहियत जो है तिनकों की तरह से जो है जो बह गई। और इंशाल्लाह ऐसे ही ये जो फौजी आमिर और फौजी डिक्टेटर हैं ये भी इसी तरह से जाएंगे, चाहे इस वक्त कितना ही बड़ा मसला हो। इस वक्त उन्होंने अपने कहने के मुताबिक 16,000 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है जिसमें कि साबिक सदर बल्कि असल सदर और मुंतखब सदर भी शामिल हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके कहने के मुताबिक 22,000 लोग और सब के सब वो लोग हैं जो कि लीडर किस्म के लोग हैं अवाम में, जो कि सारे सारे पहले MP हुआ करते थे, मजलिस शुरा के मेंबर हुआ करते थे, खुद इख्वान मुस्लिमीन के जो मुर्शिद जो उनके सरबराह हैं मोहम्मद बदी वो भी गिरफ्तार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन को हम सिर्फ फर्जी समझेंगे, उसको हकीकी नहीं समझेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब। जनाब मिस्र में जैसे ही यह ऐलान किया गया कि आइंदा इलेक्शन में जनरल सीसी बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, कई शहरों में तलबा सड़कों पर आ गए और कल रात उनके मुजाहरे जारी रहे, आज दिन में भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं और कल रात के मुजाहरे में कम से कम एक तालिब इल्म वहाँ पर जाँ बहक हो गया और बहुत से ज़ख्मी हो गए। इन हालात को अगर आप देखें तो इसके पेश नज़र आप क्या कहते हैं सिदारती इलेक्शन किस माहौल में होगा?
ये बड़ा बेहतरीन जवाब है इस सत्तार अल-सीसी को जो ये कह रहा है कि मुझे अवामी मुतालबे पर इलेक्शन लड़ना है।
जी।
अगर अवामी मुतालबा यही था कि उसको इलेक्शन लड़ना है तो फिर ये लोग सड़कों पर क्यों आ रही हैं? इसमें इन्होंने इस वक्त जो अपने पूरी हुकूमत का ढांचा जो बाहर रखा है उसमें तमाम अपने लोगों को और अपने फिक्र के लोगों को शामिल किया हुआ है। उसमें इनके ये जो जजेस हैं जिन जिसमें ये जिस कोर्ट में और जिस अंदाज से इन लोगों को फांसी की सजा दी गई है वो भी सबके सामने है, और जो इनको 550 के लगभग लोगों को जो सजा मौत दी गई है वो भी वो जज हैं जो के बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ हैं और इस्लामी कुवतों के वो हक में नहीं है। इन्होंने बड़ा चुन के ऐसे लोगों को यहाँ पर सीटों पर बिठाया है। बात यह है कि अब ये इनका जो भी सिलसिला होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन इनका होगा या जो भी इनका आगे अमला होगा वो भी जाहिर इसी तरह का ये तैनात करेंगे। वहां पर भी ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जिसमें बड़े आराम के साथ इलेक्शन जीतना चाहेंगे। अवामी रद्द अमल ये जो है ये एक फितरी है, ये होना था और ये इस चीज का जवाब है जो इन्होंने कहा है कि मैं अवामी मुतालबे पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर अवामी मुतालबा यही था तो फिर ठीक है, पर तुम्हें किस चीज की डर किस चीज का है, तुम्हें खौफ किस चीज का है? तुम तमाम लोगों को तकरीबन इस वक्त जो खबरें आ रही है तकरीबन 25 से 30 हजार लोग जो है वो इस वक्त इस मुख्तलिफ जेलों में कैद है। फिर उन सबको छोड़ दो, फिर इनके लीडर को छोड़ दो, खुद मोहम्मद मुर्सी को छोड़ दो, इस अपने मुखालिफ जितने भी है सबको छोड़ो, आदाब छोड़ो, फिर तुम्हें खतरा क्या है? अगर अवामी मुतालबा यही है, अगर तुम्हें इसमें कोई शक नहीं है, अगर लोगों ने तुम्हें ही वोट देने हैं तो फिर तुमने क्यों तमाम पार्टीज को तुमने इस तरह से बंद करके रखा हुआ है? सबको खुला छोड़ो, फिर क्या मसला है? लेकिन इससे ये मालूम हो रहा है कि ऐसा नहीं है, अवाम बिल्कुल इसके हक में नहीं है। लेकिन जो कल रिजल्ट जो आने वाले हैं, अगर ये इलेक्शन लड़ता है जो लग रहा है कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि इसने अपने तमाम तकरीबन वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं जिसमें ये इलेक्शन जीतने का इसका जो हो चुका है इंतजाम, वो सारे इसने अपने टूल भी मुकम्मल कर लिए होंगे। लेकिन अब बात ये है कि ये अब इलेक्शन, अब इसकी अहमियत इलेक्शन की क्या रह जाएगी? अब इस इलेक्शन में क्या अब यही जो बड़ी ताकतें हैं, ये जो अमेरिका है या जो और बैठे हुए हैं जो हर मुल्क में जाकर ये बातें करते हैं जी आपके इलेक्शन ठीक हुए, आप इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आपकी हुकूमत को हम मानते हैं और आपकी हुकूमत को नहीं मानते, अब यहाँ पर इन लोगों का क्या नुकता नजर होगा, यहाँ पर इनका रद्द अमल क्या होगा ये देखना होगा। क्योंकि अब तो यहाँ पर सब खामोश है, यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा। इसमें इनके साथ जो कुछ अब होने वाला है वो भी सबको नजर आ रहा है और ये अवाम है, ये कुछ तो खून चलता रहेगा। अवामी ताकत के सामने कुछ ठहर नहीं सकती, अवामी रद्द अमल जो है किसी चीज को जो है वो ठहर नहीं देता। ये दुनिया की तारीख है और तमाम दुनिया इस बात को जानती है कि जहां पर अवाम खड़े हो जाते हैं वहां पर कुछ बाकी नहीं बचता। आप ये देखें कि पिछले दो इनकी जो सिविल आमिर हुकूमतें गुजरी हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई इस किस्म की शोरिश बुलंद नहीं हुई, इस किस्म के लंबे अरसे तक ये हुकूमत करते रही है। सिर्फ आखिर में आके ये हुस्नी मुबारक के खिलाफ एक शोरिश हुई, एक इनकलाब आया जिसके नतीजे में उसकी हुकूमत खत्म हुई और मुंतखब हुकूमत आई, और मुंतखब हुकूमत को इन्होंने किस तरह से उसका किया पांचा किया वो भी आपके सामने है। अगर इन तमाम चीजों को सामने रखा जाए और फिर इनके इलेक्शन की अहमियत बाकी क्या रह जाती है, और इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं जो इसमें जो हुकूमत बनने वाली है
जी जी।
उसकी अवाम के अंदर क्या पजीराई होगी, अवाम उनकी कितनी इज्जत करेगी, अवाम उनके कितने हुक्म मानेगी, इन्होंने क्या इनकी फौज, इनकी पुलिस, इनके इदारे क्या इस काबिल फिर होंगे कि अवामी मसाइल को हल कर सके, या अवाम इनके किसी भी मामले में इनके साथ तामन करेगी? ये सब चीजें अपनी जगह पर एक सवालिया निशान है, अगर ये जिसका जवाब भी काफी हद तक जो है मौजूद है। लेकिन इनका ये इलेक्शन का इस तरह से ऐलान करना और इस तरह से इनको ये बात करना कि अवामी मुतालबा था और उसके जवाब में अवाम का पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह खड़े हो जाना, ये सबको जो है बता रहा है कि अब क्या होने वाला है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। जनाब मिस्र में 528 या 29 अफराद को एक साथ सजाए मौत सुना दी गई और सूरत हाल ये थी कि वकलाए सफाई को इजलास में आने की इजाज़त भी नहीं दी गई और आलमी इदारों ने सिर्फ उसकी मजम्मत करने और बाज ने इजहार तशवीश पर इक्तफा किया है। मामूली मामूली बात पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया जाता है, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, हमले की धमकी दी जाती है, नाकाबंदी की जाती है। क्या नुमाइशी अदालत के जरिए किसी सियासी जमात के इतने अराकीन को एक साथ सजाए मौत सुनाए जाने का वाकया इस बात का मुतकाजी नहीं था कि इस पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाता और मिस्र के इख्तदार पर काबिज टोले के खिलाफ करारदाद पास की जाती?
आपने बिल्कुल बहुत ही मुनासिब और ऐसा सवाल किया है जो आज की जो आलमी सतह पर हुक्मरान और हुक्म फरमा मुनाफकत है उसका चेहरा जो है वो आश्कार करने के लिए आपका सवाल ही काफ़ी है। पाकिस्तान में बहुत से दहशतगर्दों को सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत दे चुका है, हजारों लोगों की फाइलें पड़ी हैं, लेकिन हुकूमत उन उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई ऐसी अदालतें नहीं हैं कि जो खास मकसद के लिए अबूरी तौर पर बनाई गई हों, हंगामी हालात के लिए बनाई गई हों। नीचे से नीचे नीचे के कोर्ट से चलते चलते ये मुकदमात फैसल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हुकूमत आलमी इदारों और यूरोपीय यूनियन और उनकी वजह से खौफजदा है और दहशत गर्दों को, कातिलों को, हमला आवरों को, कई कई सौ कत्ल किए हुए लोगों को जो है वो उनको भी सजाए मौत देने के लिए तैयार नहीं। वो यूरोपीय यूनियन, वो अमेरिका और वो इंसानी हकूक की तंजीमें जो पाकिस्तान में कातलों और दहशत गर्दों के लिए इस तरह से दबाव डाल रही हैं, अगर वो वाकई चाहती कि मिस्र के अंदर इंसाफ हो और लोगों को इंसाफ मिले तो ये 529 मजलूम हुर्रियत पसंद जो वहां पे जमहूरी हकूक और अपने इंसानी हकूक की जद्दोजहद कर रहे थे उनके खिलाफ ऐसा जालमाना फैसला जो है उसके खिलाफ आवाज उठाते। मैं यहाँ पे ये वाजे कर दूं अपने आपके नाजरीन और सामईन को कि जो पहला इनकलाब आया था उसमें लोगों को शायद तवक्को हो कि इलाके की जो बादशाहते हैं वो उनको ठंडे पेटों हजम कर लें या उसको कबूल कर लें, या मुमकिन है ये तवक्को हो कि यूरोपीय यूनियन या जमहूरियत पसंद जो है नाम नेहाद जो कुवतें हैं वो उनका साथ दें। मेरा ख्याल है अब जो जद्दोजहद का जो नया मोमेंटम डेवेलप होगा जिसके लिए इख्वान मुस्लिमीन ने कॉल दी है कल मिलियन मार्च की, उसके बाद ये जो अब सूरज तलू होगा वहां जमहूरियत का, इस्लाम का और आजादी का, मेरा ख्याल है अब उसमें मुनाफकाना जो रवैया रखने वाले लोग हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब ये ठीक हक को बातिल का मार्का होगा, सामने आ गई हैं वो हुकूमतें और वो लोग और वो बादशाहतें कि जो नहीं चाहती कि अवामी हुकूमतों का चलन जो है वो इस खत्ते में कायम हो। मेरा ख्याल है आलमी सतह पर भी, खुद पाकिस्तान में आप देखें, हिंदुस्तान में आप देखें, बाकी जगह पे देखें, ये जमात इस्लामी और इस तरह की बाकी सारी तंजीमें इन्होंने कंडम किया है जो कुछ फौजी जनता मिस्र में कर रही है, और इख्वानुल मुस्लिमीन फकत मिस्र की जमात नहीं है, 75 से ज्यादा मुल्कों में मौजूद है, इसके करोड़ों बाकायदा मेंबर हैं, इसकी अक्सरियत साबित हो गई है ट्यूनिस में, मराको में, बाकी जगहों पर। और आप ये देखें कि कुवैत खुल के हमायत नहीं कर सका सऊदी अरब की, इसलिए कि कुवैत की पार्लियामेंट के अंदर इख्वान मुस्लिमीन मौजूद है। जॉर्डन उस तरह से जो है वो उसको खिलाफ कानून इसलिए करार नहीं दे सका कि जैसी भी बादशाहत है इसके बावजूद उसकी पार्लियामेंट में जो है वो इख्वान मुस्लिमीन का असर और रसूख मौजूद है। बहरैन के बादशाह यहाँ पे पाकिस्तान आए तो उन्होंने और तरह का रवैया इख्तियार किया, बाद में जाके उन्होंने इख्वान मुस्लिमीन के खिलाफ इसलिए बयान दिया कि उनको सरपरस्ती की जरूरत है अपने अवाम को दबाने के लिए सऊदी अरब के अंदर, तो इसलिए उन्होंने, लिहाजा अब जो तब्दीली आएगी मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही हमागीर होगी और पूरे खित्ते में जो है वो इंसानी हकूक, हकीकी जमहूरियत, इस्लाम और आजादी का सूरज जो है वो तलू होने चला
इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जनाब मिस्र की जिस नुमाइशी अदालत ने 528 या 29 अफराद को एक साथ सजाए मौत सुनाई है, इसके दो दिन बाद मजीद 682 अफराद पर आए इल्जामात की उसने समाअत की और 28 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया है। खदशा यह है कि इन अफराद को भी सजाए मौत सुनाई जा सकती है। क्या कोई आलमी अदारा इस बात का मजाज नहीं है कि मिस्र के जो हाकिम टोला है उसको इस किस्म के फैसलों से और इस किस्म की नस्ल कुशी से रोक सके? हमारे पास 3.5 मिनट का वक्त है।
जी नहीं, यह हकीकत है कि आलमी इदारों ने इसके बारे में कहा है, इसकी मजम्मत की है, लेकिन खुद मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्कों, अमेरिका की वजारत खारजा ने भी इसकी मजम्मत की है, लेकिन वो मजम्मत बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इनको चाहिए कि उस मजम्मत से आगे बढ़ करके, अभी उन्होंने यूक्रेन के मामले में रूस के खिलाफ कितना सख्त रवैया अपनाया, उन्होंने रूस को बाहर निकाल दिया, G8 से निकाल दिया, उसके अलावा सदर पुटिन के खिलाफ भी सैंक्शन नाफिज कर दिए, क्या क्या और बड़ी धमकियां दे रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जो तरीका होता है बाज़ जगहों पे एक और होता है और बाज़ दूसरी जगहों पे जहां पर उनके अपने मफादात होते हैं उनका तरीका बिल्कुल दूसरा होता है। यहां पर दरहकीकत पसे पर्दा यही लोग हैं जिन्होंने ये सब करवाया है। अमेरिकी एम्बेसी जो कायरम है वही सब करवा रही थी, और उसके अलावा ये सऊदी वगैरह हैं, सऊदी और ये दूसरे इमारात वगैरह खलीजी लोग हैं, जब तक अमेरिका से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है ये कुछ नहीं करते हैं। ये तो ये न समझना चाहिए कि ये इनकी मर्जी के बगैर हुआ होगा, या आगे जो भी इस तरह के अहकाम आएंगे इनकी मर्जी के बगैर होंगे, या सीसी जो वजी जो
जी दिल्ली से भी हमारा रबता मुनता हो गया। बहरहाल नाजन, आपने तीनों तजिया निगारों के ख्याल मुलाहजा फरमाए। जहाँ तक जनरल अब्दुल फत्ता असीसी के सदारती उम्मीदवार बनने का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि यह गैर मुतवक्के नहीं था। इसकी तवक्को उसी वक्त की जा रही थी जब वहाँ फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और वक्ती तौर पर एक उबूरी हुकूमत कायम की। उसी वक्त से यह पेशिनगोई की जा रही थी कि बहुत जल्द जनरल अब्दुल फत्ता असीसी सदारत की कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, जो अदालती कत्लेआम का सिलसिला मिस्र में शुरू किया गया है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है कि 529 अफराद को इंतहाई समरी ट्रायल और वकलाए सफाई को भी अदालत में आने की इजाज़त न दी जाए और सजाए मौत सुना दी जाए। और इसके जाहिर है कि इस पर आलमी इदारों का जो रद्द अमल है इंतहाई नाकिस, नाकाफ़ी और इंतहाई कमज़ोर रद्द अमल है। इस पर फौरी तौर पर आलमी इदारों को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए था। सलामती कौंसिल का फौरी तौर पर हंगामी इजलास होना चाहिए था। मिस्र के हाकिम टोले पर दबाव डालना चाहिए कि यह फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का ऐलान करे। और अगर आलमी इदारे साम्राज्य ताकतों के ज़ेर असर हैं, आलमी इदारे साम्राज्य ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और वो इस सिलसिले में ठोस मौक़िफ़ अख्तियार करने से गुरेज कर रहे हैं, तो दुनिया के अवाम का फरीज़ा बनता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम मुल्कों के अवाम का, कि वो आसानी के साथ, खामोशी के साथ इस वाक़े की ख़बरों को सुनकर उस पर खामोशी अख्तियार न करें, बल्कि इस पर अपना रद्द अमल दिखलाएँ। कम से कम मुजाहरों के ज़रिए इस फैसले के ताल्लुक से अपनी नफ़रत का ऐलान करें। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।